आयत में साथ साथ रहेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं इसको आपके सामने रखती हूँ। आयत 229, अत्तलाकु, तलाक, मर्रतईन, दो बार है। फइमसाकुम बिमारूफिन, फिर रोक लो उसके बाद अच्छे तरीके से। इमसाक मसक से है, आप और मैं ये लफ्ज शुरू से पढ़ते आते हैं कि एक औरत मर्द के साथ तलाक की जो बात है वो क्या कैसे है कि दो मर्तबा देगा एक मर्द, उसके बाद क्या करो, फइमसाकुम बिमारूफ। इसके नीचे आप एक एरो डालिए और लिखिए, बल्कि मेरा दिल था बोर्ड पे भी कोई लिखे पीछे तो शायद आसानी हो जाए दूसरों को भी। रोक लो से मुराद है कि रजू कर लो। इमसाक के मानी में क्या लिखिएगा, शौहर को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो इस तलाक के बाद रोक लो उस औरत को, यानी रजू कर लो, लेकिन शर्त क्या कि भी मारूफ मारूफ तरीके से हो, ज्यादती करने की नीयत ना हो उसको, यानी कोई टॉर्चर देने के लिए नहीं, बल्कि एहसास हो गया कि मैंने इसके साथ ज्यादती की थी, अब मैं ज्यादती नहीं करूंगा तो ठीक है। या फिर औ तसरीहुम भी एहसान, छोड़ दो उसको एहसान के साथ। ये है तीसरी तलाक। पहली बार तलाक का टॉपिक दो दफा दोहराया जा सकता है, इसके बाद तुम उसको या तो रोक लो तो या फिर छोड़ दो, दोनों में मारूफ तरीका और एहसान होना चाहिए। मैं इसके तरीके पे भी नहीं आती, आगे चलती हूँ। वला यहिल्लु लकुम, मर्दों को कहा जा रहा है, कौन, तलाक देने वाला मर्द, क्यों मर्दों और शोहरों, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, अन ताखुजू, कि तुम ले लो, आखज या खुजू से क्या ले लो, मिम्मा, मिन और मा, उसमें से जो आतई तुमू हुन्ना, तुमने दिया है उन औरतों को, यानी तुमने अपनी बीवियों को जो कुछ दिया है तुम उनसे वापस नहीं ले सकते, शयन कुछ भी, थोड़ा सा भी। ये नहीं कि वो तुम्हें गिफ्ट दिया था, अंगूठी दी थी, उस वक्त तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, आप मुझे जहर लगती हो, मेरी अंगूठी वापस करो, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फरमाया वापस नहीं ले सकते शैयान कुछ भी, इल्ला, सिर्फ दी हुई चीज वापस लेने का एक ही उजर है, क्या, अहीं यखाफा, वो दोनों जाने। अब यहां गौर से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि इसके बीच में बात है कि वो दोनों जाने, कौन, शोहर और बीवी, क्या सोचे, इस बात का खौफ रखे कि अल्लाह यकीमा, कि वो दोनों नहीं कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हदों को, यानी बीवी को लगता है कि मैं इसकी बीवी बन के भी इसकी इज्जत नहीं कर सकती, और जो इसकी रिस्पेक्ट थी या इसको एक अपने से डोमिनेंट समझना था मैं नहीं कर सकती, तो साथ रह के हक अदा ना करने से बेहतर है कि फिर इसको मैं छोड़ दूं, गिल्ट में तो नहीं जाऊंगी। एक मानी शोहर भी इसी तरह की फीलिंग्स रखते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं इस औरत के साथ निभा नहीं कर सकता, खामखा गुनाहगार होने से बेहतर है कि मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है। फाइन खिफ तुम, फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो, क्या, अल्लाह यकीम हदूद अल्लाह, कि नहीं वो कायम रखेंगे दोनों अल्लाह की हदों को। बार बार नोट कीजिए अल्लाह की हद, अभी इंशाल्लाह वजाहत होगी अल्फाज की तो आपको समझ आएगा, यानी शौहर बीवी के रिश्ते में बाउंड्रीज में रहने को बहुत अहमियत दी जा रही है कि वो दोनों कायम ना रखेंगे हदूद अल्लाह। फला जुनाह अलैहिमा, फिर नहीं गुना इन दोनों पर, फी मफ्तदत बिही, के वो फिदिया दे इसका। इसके नीचे लिखिए खुला, देखिए तलाक के मौजू में सबसे पहले अल्लाह ने औरत की तरफ से तलाक का मुतालबा दायर करने की बात है। खुला उस कैफियत को कहते हैं कि जब एक औरत रहना नहीं चाहती और मर्द तलाक देना नहीं चाहता, यानी नाराजगी या नापसंदीदगी औरत की तरफ से, नापसंदीदगी और खराबी औरत की वजह से मर्द के नहीं है। अब औरत तलाक दे तो नहीं सकती, लेकिन औरत मांग सकती है। अब औरत मांगती है तो शोहर नहीं देता, तो फिर औरत क्या करेगी, इफ्तदत बिही, फिदिया लफ्ज़ इसके अंदर छुपा हुआ, फिर औरत कुछ दे देगी, वो अंगूठियां सोने की चांदी की सारी वापस कर देगी, कुछ जमीन का टुकड़ा उसके नाम पर, कहती ये सब ले लो मेरी जान छोड़ दो, तो फिर कर सकती है। यानी इसमें एक जुमले में बोल दूं इस बात को, दिए हुए तोहफे मर्द ने जो बीवी को शादी की सूरत में दिए हुए थे या बीच की जिंदगी में अच्छे दिनों में दिए थे, मर्द वापस नहीं ले सकता। एक सूरत है सिर्फ वापस लेने की, कि बीवी ना पसंद करे उसको। अब बीवी कहती है कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, वो कहता नहीं मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको छोड़ूंगा तो अब फिर नए सिरे से पैसे जमा करूंगा, फिर एक लड़की ढूंढूंगा, फिर उसके हक मेहर के पैसे करूंगा, फिर उसका घर बार बनाऊंगा। वो कहती है अच्छा, वो जब मुझे हक मेहर दिया था ना, ये पकड़, ये अपनी दूसरी बीवी को दे देना। और ये जो मुझे तूने पैसा रुपया कुछ ना कुछ दिया दिलाए ना, ये सब ले ले, तो ये जायज है। देखिए इस्लाम कितना मुनसिफ है, क्योंकि अब मर्द ने दोबारा शादी करनी है, और औरत जब दोबारा कहीं और करेगी तो उसको फिर मिल जाना है। ना औरत प्रो मैन है और ना प्रो वुमेन है, इस्लाम का मामला बिल्कुल सच्चा है। तो फिर कहा औरत दे दे, और इसको शरीयत में खुला कहते हैं। ठीक है, ये आप किताबो तलाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद हो जाएंगी। फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा, फिर इनके करीब ना जाओ, इनसे ज्यादती ना करो, क्योंकि वमई यतअद्दा हुदूद अल्लाही, जो कोई अल्लाह की हदों के करीब जाएगा, फौलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, बस वही लोग जालिम हैं। मैं एक स्ट्रेच में इस पूरी आयत का तर्जमा पढ़ती हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। अत तलाक मरतान से शुरू करते हैं, आप उर्दू तर्जमा देखिए जो आपके पारे पे लिखा हुआ है। तलाक दो बार है, या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए, या भले तरीके से इसको रुख्सत कर दिया जाए, और रुख्सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत इससे मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्टेड है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम ना रह सकेंगे, तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि औरत अपने शोहर को मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। बात समझ गए, ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावज ना करो, जो लोग अल्लाह की हदों से तजावज करेंगे वही जालिम है। मुख्तसर सी आयत है, लेकिन मुआशरे में फैली हुई एक बहुत बड़ी खराबी को जाया कर दिया। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिए। अरब जाहिलियत में कायदा क्या था, एक शख्स अपनी बीवी को बेहद और हिसाब तलाके दे सकता था, यानी तलाके को हद नहीं थी, 10 तलाके भी दे दो, 20 भी दे दो, देर वॉज नो एंड। ठीक है, अब क्या होता, जिस औरत से उसके शौहर का मिजाज बिगड़ता, नाराज हो जाता, तो वो इसको बार बार तलाक देता, फिर रजू करता, फिर तलाक देता, फिर रजू देता। अब वो औरत ना तो उसके साथ रह रही है और ना उससे जान छुट रही है कि कहीं और चली जाए। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस एक आयत में जुल्म का दरवाजा बंद कर दिया। अत तलाक मर्रतान कहकर, ये जो हमारे कल्चर में काम मारूफ बात है ना कि तीन तलाकें या तलाक देने के अंदर ही तीन तलाकें है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, फिर आप मुझे उसका जवाब दीजिए कि आपको क्या पता है। सच बोलेंगे तो फिर मैं ज्यादा मदद करूंगी, अगर आप यस नो नहीं कहेंगे तो मैं फिर ठीक है जितना भी है। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि तलाक पूरी होती है तीन दफा देने से वो हाथ खड़ा करें? सब यही सोचते हैं कि तलाक जब तक तीन बार ना दे दी जाए पूरी नहीं होती, सबका ये ख्याल है ना। तो इसको बड़ा सा क्रॉस लगा दें। अब जो मैं जुमला बोल रही हूं, मैंने कल हिंट दिया था आपको, आज दिखती हूं, जुबानी याद करिएगा ये जुमला। एक तलाक मुकम्मल प्रोसेस है, आप एक दायरा बनाए ना, अगर इधर शुरू होने से आप देखिए, एक तलाक एक पूरा प्रोसेस है, उससे तलाक हो जाती है। अत तलाक मर्रतान कहकर अल्लाह सुबहान तआला ने यहां बताया कि पहले दौरे जाहिलियत में तो लोगों के पास अनलिमिटेड चांसेस थे ना, शोहर बीवी को एक तलाक दे देता, कुछ दिन खुश रहता, फिर तलाक देता, कोई हद ही नहीं थी, तो बीवियां बेचारी लटकती रहती थी, तो अल्लाह ने उसको लिमिटाइज कर दिया, खत्म, स्टॉप हेयर। अत तलाक मर्रतान, दो बार, मर्रत उनसे, अभी मैं आपको थोड़ा सा लफ्जों में ले जाती हूँ और फिर इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं इस मौजू को जब तक समझ ना आए, अभी कच्ची कच्ची बात समझें। तलाक देने का अमल क्या है, पहले तो इसकी थोड़ी सी लफ्जी वजाहत लिख लें। लफ्ज तलाक तो लाम काफ से है, तलका का मानी होता है आजाद हो गया। तलकतिल मरअतु मिन ज़ौजिहा, औरत अपने शोहर से जुदा हो गई। इसी तरह अत तलकल असीर कहते हैं कैदी के रहा होने को, जैसे कैद में जब होते हैं लोग फिर आजाद हो जाते हैं ना, तो ऐसे कैदी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह नाकतु तालिक, उस ऊंटनी को कहते हैं जिसके नाक में नुकेल ना हो, समझ आ रही, बिला नुकेल के ऊंटनी। आप देखिए, आपको डिक्शनरी के हर लफ्ज में कहीं ना कहीं ऊंटनी या ऊंट का कुछ चीजें जरूर मिलेगी। इसी तरह अत तालिका, तो ऐसे ही वो ऊंटनी जिसको आजाद छोड़ दिया, جدھر چاہے کھائے پیے پیے جو بھی ہے. اسی طرح سے اتلقو ہرن کو بھی کہتے ہیں ڈیئر. کون سے ڈیئر؟ ای والا کہ اے والا؟ کئی لوگ دوسرا لکھ دیتے. آپ کہتے ہیں ڈی ای اے آر کیا ہوتا ہے؟ پیارا. اور ڈی ڈبل ای آر؟ ہرن. ہرن کو بھی عربی میں تلق کہتے ہیں. کیوں؟ آزاد ہوتا ہے, یہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. نیس وہ اونٹنی جو مقیت نہ ہو, قید نہ ہو, اس کو بھی یہی لفظ بولتے ہیں. لسان تلقن کہتے ہیں تیز چلنے والی زبان کو. تر 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 بولتے ہیں نا لوگ, وہ زبان جو بہت تیز چلتی ہے. اردو میں لفظ سنا آپ نے مطلق؟ وہی لفظ ہے, ایبسلیوٹ, ختم. مقید کی ضد ہے یہ, جو محدود میں ہو. اچھا, آپ نے قرآن میں اس لفظ سے طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ سنا؟ ایک لفظ بول دیتی ہوں پھر سب یاد آ جائے گا. ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. فن تلقا. شابہ. فن تلقا. اب یہ باب انفعال میں چلا گیا, نون آ گئی ہے نا بیچ میں, چلتے چلتے دونوں الگ ہو گئے. ان تلقا مانی کے وہ دونوں روانہ ہوئے, یعنی آج یہاں کھڑے تھے, یہاں سے جس کو آپ کیا کہتے ہیں, جہاز اٹھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈپارچر ہو گیا, ڈپارٹ ہو گئے. ڈپارچر کے معنوں میں ان تلقا آیا. قرآن میں آپ پڑھیں گے آگے, غالباً سورۃ سواد ہے. ون تلق الملأ, سردار جو تھے وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلے گئے. حضرت موسیٰ نے بھی کچھ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے, ولا ينطق لسانی, میری زبان نہیں چلتی ٹھیک طرح, رکتی ہے, اس میں وہ ہے, لکنت ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگلوں اور صحراؤں میں رہتے ہوئے ایک دور علاقے میں بھیجا. پھر اس کے بعد فرعون کے پاس جب بھیجا تو ان تلق لسانی کیا ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ کے گھبراہٹ شروع ہو جائے. جب آپ کہتے ہیں نا زبان میں گریں پڑ جاتی ہیں. چلیے وہ تو سب ہو گئے لفظ طلاق. اب یہ جو اسلام میں طلاق ہے وہ کیا ہے؟ کسی بندھن سے آزاد کرنا اور نجات دینا. شوہر کا بیوی سے نکاح کے بندھن کو کھول دینا, اس کو طلاق کہتے ہیں. طلقہ کے معنی طلاق دے دینا. متلقہ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی, اسی کی جمع آپ کے پاس پچھلی آیت میں آئی تھی, متلقات جمع ہے. تو نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. جب یہ توڑنا ہوتا ہے تو جس طرح اس کو جوڑتے ہیں اسی طرح اس کو توڑنا بھی ہوتا ہے. چلیے, اطلاق مرتان. لفظ مرتان سے آپ کو پوری طلاق سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. ہم کیا سوچتے ہیں طلاق دو مرتبہ, یعنی طلاقیں دو ہیں, یہی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں. لفظ مرتان کو دیکھیے گا کیا ہے, مرتن مرتن کا تسنیہ. مرتن کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک بار, ونس اپون اے ٹائم. انگلش میں آپ کہانی سناتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں ونس اپون اے ٹائم, اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو مرتن ایک بار, تو مرتان کیا ہوا؟ دو بار. اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ دیکھیے, اگر ایک ہی طلاق دوسری طلاق کے ساتھ ملتی تو یہاں مرتان نہیں ہونا تھا. کیا ہونا تھا؟ طلاقتان. جن کو تھوڑی سی گرامر سمجھ آئے, طلاق ایک طلاق, طلاقتان دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طلاقتان فامساکم بمعروف و تصریحکم بإحسان. یہ کہہ کر کہ طلاق مرتن بتا دیا کہ ایک عمل دو بار ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو طلاق دو ہی بار ہے. اس کا عام طور پہ مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دو مرتبہ طلاق طلاق کہہ دے, یا ایک مہینے کے وقفے کے بعد دوبارہ طلاق کر دے, تو اس سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ واپس ہو سکتی ہے, اور تیسری دفعہ بولے تو معاملہ شروع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو اس کا ہلکا سا دیتی ہوں طریقہ, طلاق دینے کا جائز طریقہ. بہت سمپل ہے, اتنا آسان ہے, لیکن ہمارے کلچر میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی. نمبر ایک, لکھیے طلاق ایمرجنسی ڈور ہے. یہ میں ہر سال جب بھی مجھے موقع ملتا ہے پڑھانے کا یہ جملہ بولتی ہوں, طلاق از این ایمرجنسی ایگزٹ. یہ آپ کے بھی ادھر لگا ہوا ہے نا, کبھی آج تک آپ نے یہ ڈور کھلا ہوا نہیں دیکھا ہوگا, اور اللہ نہ کرے کبھی بھی کھولنے کی ضرورت پڑے, لیکن ہے ضرور. کوئی بلڈنگ اپروو نہیں ہوتی جب تک اس میں ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہو. تو طلاق عام حالات میں یوز کرنے والا ڈور نہیں ہے. وہ بڑے بدبخت مرد ہیں جو بات بات پہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں طلاق کی, اور وہ بیویاں بھی بڑی بدنصیب ہیں جو اپنے شوہروں سے طلاق مانگنے کو اپنی عادت ہی بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ طلاق ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, پری پلانڈ ہے کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. انشاءاللہ سورۃ نساء میں آپ پڑھیں گے, دونوں ملیں گی آپ کو. شوہر میں بگاڑ ہے, بگڑے ہوئے شوہر کو عورت کیسے ٹھیک کرے, اور عورت بگڑی ہوئی واللاتی تخافون نشوزہن, تو بگڑی ہوئی لاڈلی بیگم کو مرد کیسے ٹھیک کرے, فیضو ہننا ودریبو ہننا. سارے مرحلے طے ہو چکے ہیں, मर्द ने निभा की बुरी कोशिश की, औरत ने बुरी कोशिश की, घर में रहते हुए बिस्तर से अलग हो गए, फिर बात ना बनी तो हकम बनाया, हकम अमिन अहली हा व हकम अमिन अहली हूँ। तीसरा बंदा आ गया, फैमिली की पंचायत बैठी मर्दों औरतों में से, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक करो, हो जाओ, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, कहा ठीक है, इट्स फाइन। ये सब कुछ हो गया, चांसेस भी दे दिए, अल्लाह ताला कहता है कर लो, कोशिश कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर डाल देगा, सयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, सब कुछ हो गया। अब लगा नहीं, काफी कोशिशें हो गई, बात घर से बाहर भी चली गई। यहाँ के कल्चर के मुताबिक आपको तो सेपरेशन भी फाइल होती है ना, अमेरिकन भी लॉ में है, इधर नॉर्वे में भी मैंने देखा है कि एक साल के लिए औरत को पार्ट कर देते हैं मर्द से, ये भी कर ले, उसमें भी अकल नहीं आई। देखिए ना, अगर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो तो जरा एक रात दूर रहने से दूर हो जाती है, दिल भर चुका है, थोड़ी दूर रहेंगे ठीक हो जाएंगे, बंदे को एनालिसिस शुरू हो जाता है। जब एक बोलता है ना तो आप अपने आपको मजलूम कह रहे हैं, मेरा मियाँ मेरे पे बोलता है, चिफता करता करता, कुछ दिन अलग हो जाओ, अब कोई नहीं तुम्हें बोल रहा, फिर आपका अंदर से जमीर जागता है, नहीं मेरी भी कसूर था, ये सब कर लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 सारा कर लिया। अब लगा कि नो नो मोर, साथ रहने में अल्लाह की हदें टूट रही हैं, मैं उसकी इज्जत नहीं करती। शौहर कहता है कि बीवी बना के इसको रखा हुआ, लेकिन मेरा दिल नहीं है इससे, ठीक है खत्म। अब क्या होगा, नंबर एक, बड़े गौर से सुनिएगा, औरत के पीरियड्स के आने का इंतजार होगा, ये बिल्कुल आपको स्टेप्स है 1 2 3 4, मियाँ बीवी इंतजार करेंगे, औरत को पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स आने के बाद जब औरत पाक होगी, मर्द इस पाकी के दौरान औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, ये सेकंड मरहला है, चाहे जिस दिन फारिग हुई, अब सोचा जो हुआ पहले से, देवर वेटिंग फॉर दैट, अब जिस दिन औरत पाक हुई, मिसाल है तो शौहर बीवी से कहता है कि हम साथ नहीं रह सकते, कोई भी लफ्ज बोल दे, किनायतन बोल दे, इशारा, ये फिकी मसले में यहाँ नहीं दे रही, इस पर पूरी बुक पढ़ाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको यहाँ कोर्स में करवाएंगे अल्लाह ने चाहा तो उसमें तलाक के बारे में डिटेल। बहरहाल मर्द बीवी से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए ना कि तोहर का पहला दिन था, ये मियाँ ने जुमला बोल दिया, अब क्या होगा, कोई बात नहीं, औरत घर में ही रहेगी, शौहर बीवी साथ हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं, वो जो सारे जुमले पीछे बोले हैं कि वो औरत मर्द एक घर में रहेंगे, इंतजार कर रहे हैं वो सारे। अच्छा अब क्या हुआ, एक औरत बीवी शौहर जब साथ रहे, वो खाएंगे, वो पिएंगे, साथ नहीं सोएंगे, ऑफ कोर्स वो मर्द कह चुके तुम्हें तलाक दी, लेकिन कोई पर्दा नहीं है उनके बीच में, कुछ नहीं, इस पूरे महीने में एक महीना गुजरेगा ना, ऐसे ही जाएगा बिल्कुल राइट अवे जैसे जाता है, औरत के दोबारा पीरियड आने को या उसके दोबारा पाक होने को ले लीजिए, एनी टाइम एनी वेयर एक मर्द को इख्तियार हासिल है, ओके अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन नाउ, मुझे मिसअंडरस्टैंड, मुझे रियलाइज हुआ नहीं, आई एम फाइन, चलो खाना पकाओ, ये मुझे अच्छा लगता था, चलो चलो बाहर चलते हैं, दैट्स इट, यही रजू है, डिक्लेयर कर दे कि मैंने अपना इरादा बदल लिया। पूरे महीने में एक मर्द को चॉइस है, एनी टाइम कह सकता है, औरत ना नहीं कर सकती, ये बड़ी फर्क है, चीज लिखिएगा, औरत इनकार नहीं कर सकती कि नहीं जी रहने दो, मैंने तो तुम्हारी बात दिल पे लिख ली, मैंने तो रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तो अभी रोज सुनती हूँ, खबरदार तुमने तो एक बार बोला था, मैंने तो 10 दफा सुन लिया, मेरा दिल खट्ट नहीं। अभी गेंद जो है ना बॉल, वो मर्द के हाथ में है, क्योंकि मर्द ने दी थी ना तलाक, औरत ने तो नहीं दी, तो मर्द ले सकता है, इसको कहते हैं रुजू। चलिए महीना खत्म हो गया, अब क्या होगा, चुप खामोश, मर्द को दोबारा नहीं बोलना, दूसरे पीरियड्स आएंगे, पाक होगी, दूसरे महीने में भी औरत साथ ही रहेगी, अक्लमंद मर्द इसके बाद, एक पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, एक महीना गुजर गया, फिर दूसरा गुजर गया, फिर तीसरा, जिस दिन औरत तीसरे पीरियड्स में आएगी, वही दोनों मैंने बता दिए सलासा क्रू में, कुछ कहते हैं जिस दिन पीरियड शुरू होंगे औरत को, कुछ कहते हैं नहीं जिस दिन पीरियड से पाक होगी, सेम बात है, नो प्रॉब्लम, 6-7 दिन की बात है, दोनों में गुंजाइश है। उसके बाद क्या, आप सुनिए, वो तलाक का प्रोसेस पूरा हो गया, अब जिस दिन औरत इस 3 माह की गुंजाइश से निकली, अब औरत मर्द जुदा हो गए, तलाक पूरी, मर्द ने दोबारा नहीं बोला, नो प्रॉब्लम, और नहीं बोलना चाहिए, ये है तलाक देने का आसन तरीका, इसको कहते हैं तलाक हसना, इसका दूसरा नाम भी है तलाक रजई, वो तलाक जिसके बीच में रुजू का हक होता है, ठीक है। अब क्या होगा, औरत अपने महके चली जाएगी, उसके वाली वारस उसको ले जाएंगे, बात खत्म, अब वो पर्दा है, अब उनका आपस में नो इंटरेक्शन, औरत चलेगी महके, मर्द आ गया इधर, अब औरत भी आजाद है, मर्द भी आजाद है, इसको तलाक़े हसना क्यों कहते हैं, कल का सबक ही साइज से शुरू होगा जो मैं आज बता रही हूँ, और मुझे इधर ही बताना पड़ेगा क्योंकि हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। औरत चली गई, घर में थी तो शायद नहीं ख्याल आया। अब देखिए, क्या 3 महीने कपल जो कि हस्बैंड वाइफ भी थे, मर्द के पास चॉइस भी है, तो क्या अगर वाकई छोटी मोटी रंजिश होगी तो वो रजू नहीं कर लेगा, बीवी को भी समझ आ जाएगी। लेकिन नहीं किया, तो दैट मीन के मैटर इज वर्स्ट। जहां कोई तीसरा पड़ता है, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे दूं, शौहर बीवी को अकेले लड़ने दें, भिड़ने दें, मरने दें, मारने दें, ना माँ बोले ना सास बोले, आप खुद सोचें, आप खुद डिसाइड करें। दोनों को एक कमरे में बंद कर दो, डिसाइड करके बाहर निकलो क्या करना है। रियली घर नहीं टूटेंगे। ये जो बीच में लड़के की माँ और लड़की का बाप आते हैं ना, वो फिर वो कहते हैं रहना, वो अम्मा अब्बा की जंग बन जाती है। हमको इतने भूखे हैं, हम इतने गरीब हैं, हम वो हैं, ये आप अगले सबक के साथ सुनेंगे बातें कुरान की आयत में। अब क्या हुआ, माँ बाप को ज्यादा, वो लड़की का कोई और रिश्ता ढूंढ दे। लिखिए, 3 माह गुजरने के बाद बॉल लड़की की कोर्ट में आ गई। फर्क क्या है कि लड़की 3 माह के अंदर शौहर को नो नहीं कह सकती थी बीवी। अब क्या हुआ, 3 माह खत्म, बीवी चली गई अपने महके, जो भी होगा। अब उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। अब मर्द को एहसास होता है कि नहीं, इतनी बुरी तो नहीं थी, गुजारा हो सकता है, या बच्चे पालने पड़ गए, या कह लीजिए जहां नजरें लगी हुई थी वो भी खुदा हाफिज कह गई, कोई वजह हो सकती है कि चलो फिर वही पुराने ही रास्ते ठीक है। अब ये मर्द दोबारा प्रपोज कर सकता है। वल्लाही वल्लाही आज पाकिस्तान में 3 तलाकों के इशू को इतना गलत किया है कि 90% घर दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं जुड़ने देते, नहीं जी 3 तलाकें, 1 तलाक के, 2, ये इशू ही नहीं है 1 तलाक और 3 तलाक। अब वो मर्द भेज सकते हैं मैसेज, पता है आपको, अब लड़की के ऊपर इख्तियार, अब गेंद उसके पास है, वो उसके प्रपोजल को चूज कर ले, माँ बाप कहते हैं ठीक है इट्स फाइन, और या कहीं और करे, अब वो यस नो करेगी, रिश्ता हो सकता है। कोई बीच में दूसरे मर्द की जरूरत नहीं, कोई हलाले की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन अब इस सूरत में क्या होगा, नया निकाह होगा। फर्क क्या दोनों में, अब इनका फर्क आप लाइन लगा के लिखें, और ये सारी बातें अगर बाद में कमाइंड में बनाए कईयों का फायदा हो जाएगा। रजू के दौरान 3 माह के अंदर मर्द ने अगर रजू कर लिया, अब क्या होगा, वो 1 तलाक जो उसने बोली थी ना, वो भी खड़ी है, मियां बीवी साथ रहना शुरू हो गए, खुदा ना खास्ता महीने, साल, 6 महीने, 10 साल बाद दोबारा किसी वक्त मर्द का गुस्सा आ गया, फिर वो कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तो अब ये जो 1 तलाक थी ना, वो पिछली 5 साल पहले वाली मिलके अतलाक मरा था, 2 हक वो इस्तेमाल कर चुका है, ठीक है। लेकिन जब ये रजू खत्म हो गया, बल्कि 3 माह के बाद दोबारा प्रपोज किया, अब नई शादी होगी, नया हक महर होगा, अब आप कहेंगे नया जोड़ा बनेगा, नई शॉपिंग होगी और नए काम करेंगे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस्लाम इस पे कुछ नहीं कहता। लेकिन ये है कि वो दोबारा मियां बीवी का निकाह होगा, अब नया सिरा शुरू, अब वो पहली तलाक खत्म हो चुकी है, ये आसान तरीका है, औरत दूसरी जगह भी कर ले। मर्द तो हर हाल में दूसरी शादी कर सकता है, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब यहां बात क्लियर है, ये है तलाक का आसान तरीन तरीका। अब मैं आपको वापस लेके चलती हूं, वही सारा तरीका है, पीरियड्स के फारिग होने का इंतजार किया, सोच लिया, समझ लिया, सब कुछ किया मर्द ने। जब बीवी पाक हुई तो उसे कहा कि ओके बेगम मैं आपको तलाक देता हूं, हो गई बात, 1 माह गुजर गया, दोबारा पीरियड्स हुए या खत्म हुए, तो मर्द फिर दोबारा कहता है, फिर अल तलाक मर रहा तान के सेम सर्कल दोबारा रिपीट कर सकता है। दूसरे माँ मर्द फिर बोल देता है कि बेगम मैं आपको तलाक देता हूं, फिर दूसरा माँ उस तलाक के साथ चलता है, तो अब क्या होगा, 2 तलाकें दी। तीसरे माँ ना बोले, समझ रहे, अत तलाक मर्रतान का अलग लफ्ज क्यों कह दिया, ये क्यों नहीं कह दिया कि तलाकें 3 है, 2 क्यों कही, 2 तलाकें वो हैं जिसके बाद बगैर किसी दूसरे निकाह के मियां बीवी मिल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे माँ भी मर्द ने सेम वही काम किया जो पहले माँ किया, अब दूसरे में, लेकिन तीसरे पीरियड्स के बाद नहीं बोला, फिर भी उसके पास सेम इख्तियार मौजूद है जो अभी तक बताया है। 3 माह के अंदर अंदर रजू कर सकता था और 3 माह पूरे होने के बाद दोबारा निकाह हो सकता है, ये 2 चांस उसने यूज कर लिए। तीसरी सूरत वर्स्ट, मैं सोचती हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, जब एक कट से गर्दन अलग हो गई है तो जरूरी है उसको फिर 3 दफा काटो, आप कोई चीज क्यों काट रहे हैं, मूली काट रहे हैं तो एक कट लगाया, मूली अलग हो गई, खत्म, तो आप फिर क्या कटे हुए के ऊपर फिर कट 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 लगाएंगे, नहीं होगा। तीसरी सूरत है कि पहले महीने में भी मर्द ने वही काम किया, दूसरे महीने के बाद दोबारा वही किया, फिर तीसरे पीरियड के बाद फिर किया, अब 3 तलाके कर, अब वो यूज कर चुका 3 हक, इधर तो साथ ही पूरी हो जाएगी अगले तीसरे महीने के बाद। अब मर्द दोबारा उस औरत को प्रपोज नहीं कर सकता। अब तरीका क्या है? अब इस मर्द के लिए ये औरत जायज नहीं रही, क्योंकि अल्लाह ने उसको इतनी अक्ल दी, इतना मौका दिया, इतनी समझ दी है। अब वो औरत शादी के बाद किसी दूसरे ही मर्द से शादी करेगी। इतनी बात समझ आ गई? अब ये जो हमारे फी जमाना ये हलाला और ये सब कुछ क्या है, क्योंकि ये आगे आना है तो यही समझ। इतनी बात क्लियर है? कोई सवाल है आप लोगों के जहनों में? मुश्किल तो नहीं है ना? जी आप पूछिए।
एक सवाल है कि कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो मर्द एक बार ही कह देता है कि तलाक 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 करने पर उस वक्त।
जी इनका सवाल बहुत अहम है। हमारा माशरा सारा इसी पे चलता है कि एक मर्द खड़ा हुआ, खाना खाया, खड़ा क्या हुआ, बैठे खाना खा रहे थे, खाना बीवी ने पकाया और गुस्से में भरा हुआ मियाँ घर आया, खाना दो, खाना दिया, आलू गोश्त बनाया हुआ था, रोटी थी, सब थी, इतना नमक डाल दिया, तुझे खाना नहीं पकाना आता, तुझे किसी, चल जा, मैं तुझे तलाक 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 दी। 10 दफा बोलने, 20 दफा बोलने, वो एक ही होती है। आज तलाक मर्रतान में एक तलाक, बस सब सिंपल एक जुमला याद कर लें कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मर्द 10 दफा भी बोल देगा तो वो एक ही है। दूसरी काउंट कब होगी? दूसरे हैज के बाद, ठीक है? तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। 100 दफा भी बोल दे। किसी की बात मैं सुनी थी, उसने कहा अल्लाह ने 3 तलाकें कही है, मैं तुझे 6 तलाकें देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। और अगर तू निकाह करके दोबारा वापस किसी से हलाला करा के मेरे पास आई तो मैं उस पर भी फिर तुझे तलाक देता हूँ। इसका नाजायज इस्तेमाल है। छुरी भी गलत इस्तेमाल करें तो हाथों में कट लग जाते हैं। तो इस्लाम खेल नहीं बनाता इन चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इस्लाम का मिजाज क्या है। अत्तलाक मरतान कहकर आपके मेरे लिए अल्लाह ताला ने कितना अच्छा रख दिया कि इफ इंसाक भी मारो, रोक लो, मसक कहते हैं। अब देखिए ये लफ्ज़ इंसाक कितना बे के लफ्ज़ पे खोलूँ तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन उसको बात सुनने से समझ बहुत आती है। यहाँ लफ्ज़ इंसाक क्यों आ गया? रोकने के लिए और बहुत सारे लफ्ज़ हैं, रोक लीजिए उनको, या आप उसको कहीं ना कहीं किसी मामले में ले आइए। तो आप देखिए कि लफ्ज मसक मीम सीन काफ से है। अल मसक को कहते हैं खाल को, स्किन को, जिसमें गोश्त और हड्डियां वगैरह बंद रहती हैं या जिनकी मशक वगैरह बनाई जाती है। आपको पता है कि ये जानवर के ऊपर जो खाल होती है ना, ये एक सैक है, इसके अंदर गोश्त हड्डी सब डाला होता है ना, तो वो हड्डियां गोश्त अलग चीजें, लेकिन वो एक जैसे हम पॉलीथिन के बैग में कुछ चीजें डाल दें ऐसी है ना, लिफाफा फटेगा तो क्या होगा, सारी गिर जाएंगी। अब यहां से आप इस लफ्ज इमसाक की खूबसूरती देखिएगा। लफ्ज इमसाक क्यों इस्तेमाल हुआ? मुख्तलिफ चीजें उसके अंदर है जिसम के, हड्डियां भी हैं, गोश्त भी है, मर्द हड्डी है, औरत गोश्त है, एक जगह जमा इमसाक, मिजाज के मुख्तलिफ होने, इख्तलाफात के होने के बावजूद पकड़ी लो, बेहतर है एक थैले में कहीं गर्म चीज ठंडी थी जो भी है कर लो, बिखरने से बेहतर है। बात समझ गई? अच्छा मिस्क लफ्ज सुना है आपने? मिस्क क्या होती है? हिरन जो होता है ना, उसकी वो जो नाफ होती है ना, उसके अंदर एक छोटी सी चीज होती है, खून उसका जो जमा होता है ना, अलमिस्क, मुश्क को कहते हैं, खुशबू को कहते हैं, इसमें खून से तरतीब पाई जाती है। यानी हिरन के जिस्म में अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि उसके खून का कुछ हिस्सा जो है ना वो नाफ में जमा होता रहता है और बाद में वो खुशबू में बदल जाता है। आप लफ्ज इमसाक को देखिए, यहां कोई और लफ्ज रोकने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि लफ्ज मिसाक मसक बता रहा है कि मुख्तलिफ मिजाज की चीजें एक थैले में डली हुई थी, डाल लो, वापिस आ जाओ, इट्स ओके, फर्क हर जगह रहेगा। और याद रखिए दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं है, सिर्फ टेस्ट चेंज करने में हम खुश हुए होते हैं। कुछ दिन नई बीवी अच्छी लगती है फिर वैसी हो जाती है। आपने कभी सोचा दूसरी शादी अक्सर मर्दों की नाकाम होती है? वजह क्या है? शुरू में टेस्ट, बाद में एक ही चीज। अल्लाह के नबी ने कहा किसी औरत को देखकर ख्वाहिश है तो अपनी बीवी के पास चले जाओ, क्योंकि उसके पास वही है जो तुम्हारे पास है। लेकिन जैसे हम यहां रहते हैं ना नॉर्वे, तो हम पाकिस्तान जाके बड़े खुश होते हैं, और पाकिस्तान वालों को अगर नॉर्वे आना पड़े तो वो लुटियां डालें। चेंज अच्छा लगता है। अपने लिए हमेशा वो डिसीजन लीजिए जो लॉन्ग रस आपके साथ रहेगा, फिर फायदा होगा। तो बहरहाल मसक का जो लफ्ज है ना, इन्फाक का ऑपोजिट है। नफक का इन्फाक क्या होता है? खर्च करना। तो इमसाक दूसरी तरफ आ जाता है। अगली लफ्ज में देखिएगा तसरीख, तो उससे आपको मजीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा अमसका के लफ्ज में बुखल का मानी भी पाया जाता है। ये सारे लफ्ज आगे जहां आएंगे वहां आपको बताऊंगी। आप लफ्ज देख लीजिए तसरीख, ये लफ्ज बहुत कम आता है कुरान पाक में। सीन रहा इसका रूट है, सराह तस्फीहुन कहते हैं जानवरों को सुबह के वक्त चरने के लिए छोड़ना, गेजिंग इंग्लिश में जिनको आता है मतलब गेज करना, जानवरों को बाहर ले जाते हैं शेफर्ड और चरवाहे और खाने के। इस अमल को कुरान में आप पढ़ेंगे सूरत नहल है गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रही, के वहीन तसराहून। तो सराहुन और तसरीहुन के मानी होते हैं कैद निकाह से आजाद करना, रुख्सत कर देना तलाक देकर, यानी तुम्हें अच्छे तरीके से रुख्सत कर दिया जाए। तो मतलब यह है कि रखो, अब ये यहां देखिए रुजू करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि वापस रख रहे हो तो अच्छे तरीके से रखो, ये नहीं कि अब तुम पकड़ के तो उसकी और मत मारो कि शायद कुछ जुल्म रह गए थे अब वो करने लगा हूं। भी एहसान एहसान के साथ करो, और तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि तुम उनसे वो ले लो जो तुम उनको दे चुके हो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो एक इंसान को अल्लाह ताला का हुक्म मानने से रोक लेती हैं। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जितनी बात हुई है वो आपको समझ आ गई है।